Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
यदि ऐसा मानते हैं तो आपका ही एक छोटा सा प्रकाश लेकर सूर्य अकेले पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक के अंधकार को कैसे हटा पा रहा है, और आपके प्रकाश की एक चिंगारी लेकर सूर्य इतना बड़ा काम कर सकता है, तो ऐसे सूर्य करोड़ों सूर्य जितने प्रकाश आपकी है, और आप वहीं बैठे हुए हो जहां वो अनादि अविद्या अंधकार बैठा है, जहां आपके स्वरूप को भी ढक रहा है, मेरे स्वरूप को भी ढक रहा है। वो अंधकार को हटाना बहुत जरूरी है। अब कैसे हटाया जाए? मेरे प्रकाश तो बहुत क्षुद्र प्रकाश है, आपका प्रकाश, हम तो यही सोचे थे कि आपके प्रकाश के सामने वो टिकेगा नहीं, लेकिन अनादिकाल से आप जहां बैठे हो वहीं वो भी बैठा है, तो क्या ये मानू कि आप उसको हटा नहीं सकते? ऐसा तो नहीं होगा। हटाना चाहें तो वह तुरंत हट सकता है। मुझे तो यही लग रहा है कि शायद आप हटाना नहीं चाहते, इसलिए वो अभी तक टिका हुआ है। आपके अंतकरण में जो अविद्या है, कारण शरीर के रूप में विद्यमान है, अविद्या अनादि अविद्या मूला विद्या, वह परमात्मा हटाना चाहे तो हटेगा, अन्यथा परमात्मा की हटाने की इच्छा न हो तो वह परमात्मा की कृपा से मस्ती से बैठा और आपको ढक के बैठा है, क्योंकि ईश्वर की कृपा हो जाए वो कुछ भी कर सकता है। उस अविद्या पर आपकी कृपा हुई है ऐसा लगता है, मेरे पर कृपा न होकर उस अविद्या पर कृपा हो गई, इसलिए अविद्या आपके सामने टिका हुआ है, अन्यथा उसको टिकने की कोई संभावना ही नहीं है। वेद्य किम न भवस्य हो घनतरम कीदृक् भवेन्मत्तमा। मेरा तम अज्ञान कीदृक् भवे, कैसा है वो अज्ञान, क्यों नहीं हट रहा है? तत्सर्वम व्यपनीय, हे भगवान अब उसको आश्रय मत दो, अब उसके ऊपर कृपा मत करो। तत्सर्वम व्यपनीय, मैं बहुत परेशान हो गया है उसके रहने से, तो उस सबको जड़ से सब निकालकर फेंकना है महाराज, और क्योंकि मैं निकालकर नहीं फेंकरा नहीं सकता, इसीलिए आपको ही फेंकना है। साक्षात प्रसन्नो भवा, अब मेरे प्रति कृपा करो, अभी तक तो उस अविद्या के प्रति कृपा किया है, मेरे प्रति कृपा नहीं की है, इसीलिए अविद्या के प्रति कृपा हुई है, इसलिए अविद्या बड़े आपके कृपा पात्र बनकर डटा हुआ है उस अमुष्ट परिमाण दहराकाश के अंदर, हृदयाकाश के अंदर, और मेरे असली कुटस्थ स्वरूप को ढककर बैठा हुआ है वो। आपकी प्रसन्नता हो जाए तो वो तुरंत भाग जाएगा, आपको उसको भगाने की इच्छा नहीं है इसलिए वो टिका हुआ है। क्यों महाराज, उसको क्यों नहीं भगाते हो? आप भगाओ, आप प्रसन्न हो जाओ, भाग जाएगा, रहेगा ही नहीं है, इसलिए आपके कृपा बिना वो अज्ञान हटने वाला नहीं है। शंकराचार्य जी शिवानंद लहरी में इस तरह भगवान शिव से अज्ञान की निवृत्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, उसी अज्ञान को लेकर यहां कह रहे हैं, बालाग्र सतभागस्य सतदा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेयः। जीव का स्वरूप कारण शरीर में इतना सूक्ष्म है ऐसा निश्चय कर लो, तो क्या इतने सूक्ष्म ही है वो? सच अनंत्याय कल्पते, और वही जीव जब अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, स्थूल और सूक्ष्म और कारण तीनों उपाधियों से वह हट जाता है, निरुपाधिक अवस्था में जब पहुंचता है तो फिर वह अनंत कल्पते, उसकी फिर कोई सीमा ही नहीं है, इतना व्यापक सिद्ध हो जाएगा कि क्योंकि वो तो अविद्या उपाधि से बालाग्र सतभागी है, सूक्ष्म उपाधि से वह आराग्रभागी है, स्थूल उपाधि से वह अंगुष्ट परिणामी है। तीनों उपाधि का बाद हो जावे तो फिर वह अनंत है, कल्पते, उसकी कोई सीमा नहीं है, निश्चिम है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, क्योंकि उपाधि के हटते ही जीव की जीवपना नहीं रहेगी, तो जीवपना नहीं रहेगा तो वह ब्रह्म भाव, ब्रह्म भाव तो फिर अनंत है। तो ये जीव के शरीर के अनुसार जीव की अवधारणा की है। मठाकाश कितना बड़ा है, है? मठाकाश कितना बड़ा होता है? जितना बड़ा मठ होता है उतना ही बड़ा मठावच्छिन्न, मठोपहित आकाश, मठाकाश उतना ही बड़ा है। छोटे मठ के अंदर छोटा आकाश मठाकाश, बड़े मठ के अंदर बड़ा मठाकाश। इसी तरह घटाकाश कितना बड़ा है, तो छोटे घड़े के अंदर छोटा घटाकाश, बड़े घड़े के अंदर बड़ा घटाकाश। ये तो उपाधि जैसा है वैसे ही प्रतीत होता है, इसलिए जीव को उपाधि के अनुरूप ये परिमाण बता दिया गया है। उसके स्वरूप में तो वह अनंत है, इस श्रुति का यही अभिप्राय है। आप उपाधि के चलते छोटे हैं, अल्पज्ञ हैं, अल्पशक्तिमान हैं, उपाधि के हटते ही आप व्यापक हैं, विभू हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं। नैव स्त्री न पुमान एष। अब रही बात, जीव इतना छोटा है तब वह जीव कौन सा जीव स्त्री है और कौन सा जीव पुरुष है, तो श्रुति कहती है ये तुमको भ्रांति हुई है। शरीर के धर्म को जीव में आरोप करके जीव को स्त्री और पुरुष कह देते हो। जीव वास्तव में स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, और जीव नपुंसक भी नहीं है। संसार में कोई भी जीवात्मा, परमात्मा की तो बात ही छोड़ दे, यहां जीवात्मा की बात चल रही है, संसार में कोई भी जीवात्मा हो उस जीवात्मा के कोई लिंग नहीं है। नैव स्त्री न पुमान एषः, न चैवायम नपुंसक एष जीवाः, न स्त्री नैव, ये वह पद अवधारण निश्चय, स्त्री तो है ही नहीं, सक हो ही नहीं सकता। बोले पुरुष होगा इसका मतलब, बोले पुरुष भी हो ही नहीं सकता है। स्त्री और पुरुष नहीं होगा तो फिर नपुंसक होगा, बोले वो भी नहीं है, क्योंकि व्यवहार में जो वाक व्यवहार शब्द व्यवहार करते हैं कि ये स्त्री ये पुरुष ये मेल फीमेल, ये तो खाली स्थूल उपाधि के चलते ये भेद है। जीव में स्त्रीता नहीं है, पुरुषता नहीं है। पता नहीं किस आधार पर ये कहने लग गए कुछ लोग, हमको आकर सुनाते हैं कि कोई कोई व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि ये जीव एक बार जो लिंग धारण कर लेता है वो जब भी जन्म लेगा उसी लिंग के धारण करके लिंग जन्म लेगा, दूसरे लिंग में वो जा ही नहीं सकता है। एक बार जो स्त्री बन गया है वो जीवात्मा, तो जब भी जन्मेगा पैदा होगा वो स्त्री ही होकर पैदा होगा, पुरुष हो ही नहीं सकता है। एक बार मनुष्य होकर जो जन्म गया पैदा हो गया जीव, वो जब भी पैदा होगा वो मनुष्य ही होकर पैदा होगा, और जीवांतर की और जात्यंतर की कल्पना नहीं करना, ऐसा कहने लग गए कुछ लोग। पता नहीं कि उस कहने का आधार क्या है, हमने पूछा कि इसका आधार क्या है, तो बोले एक बार उस जीवात्मा को जो शेप मिल गया, डिजाइन मिल गया, वह उसी के आकार में बन गया है, इसलिए वही आकार का शरीर होगा तभी वो जन्म लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। मान लो कि वे लोग जीवात्मा को ईंट की तरह मानते हैं, है ना? आपने देखा नहीं ईंट कैसे बनता है? पहले तो मिट्टी, गीली मिट्टी लेते हैं, है ना? मिट्टी को गीला करते हैं, गीली मिट्टी होती है, उसमें ईंट का कोई आकार नहीं होता। तो लकड़ी के एक सांचा होता है, उस गीली मिट्टी को उस लकड़ी के सांचे में डाल देते हैं, और उसके बाद थोड़ा सुखा देते हैं तो वो मिट्टी सांचा जैसा आकार का है उसी आकार का वो ईंट बन जाता है। ये समझ में आ गई कि नहीं बात? क्या तुम आत्मा जीवात्मा को उस गीली मिट्टी की तरह मान रहे हो जो एक मनुष्य के शरीर में आके बैठ गया और उसी आकार का बन गया? अब उदाहरण क्या देते हैं, वो जो डिश सांचे के अंदर ईंट बनाया था, उस ईंट को, बने हुए ईंट को उसी आकार का सांचा होगा तो उसके अंदर बैठ जाएगा, अन्यथा उसके अंदर फिट नहीं होगा। वो सांचा अली थोड़ा छोटा होगा तो अंदर घुस ही नहीं पाएगा, आधा बाहर निकल जाएगा आधा अंदर घुसेगा, यही ना? सांचा यदि यदि कुछ छोटा बन गया दूसरा, उसके अंदर वो बने हुए ईंट को घुसाने खोजो तो आधा तो ईंट के अंदर घुसेगा आधा बाहर हो जाएगा। और यदि उससे भी बड़ा सांचा होगा तो उसके अंदर ईंट को डालोगे, उस सांचे के एक कोने में होगा, बाकी कोना खाली हो जाएगा। तो वो लोग ये कहते हैं कि ठीक इसी तरह मनुष्य के आकार में बना हुआ जो जीव है, मनुष्य के शरीर का जैसा आकार है उसी आकार का वो जीवात्मा का एक ढांचा बन गया है। अब वो जीवात्मा मनुष्य के शरीर से निकलकर मनुष्य के ही शरीर मिला तो उसमें फिट होगा। अब चींटी के या उंदर के शरीर मिला तो वहां क्या फिट होगा? थोड़ा तो घुसेगा, बाकी तो सब बाहर रह जाएगा। उनकी कल्पना, ये उपनिषद की कल्पना नहीं है, ये उपनिषद के विपरीत है। इसलिए उस धर्म को सर्वथा किसी भी हालत में आप लोग नहीं मानना जो धर्म उपनिषद और वेद से विरुद्ध बात करते हो। अब वो कहते हैं कि वो मनुष्य जीव आत्मा इस शरीर से निकलकर हाथी के शरीर में चला गया तो वो ईंट बड़े सांचे के अंदर डालोगे तो पूरे कवर नहीं करके एक कोने में बैठेगा, बाकी तो खाली हो जाएगा। तो मनुष्य जीवात्मा हाथी के शरीर में भी जाएगा तो हाथी के कोने में बैठा रहेगा, बाकी सारा शरीर तो आत्मा से रहित हो जाएगा, होगा कि नहीं? परंतु ऐसा तो होता नहीं है। हाथी के शरीर के अंदर हाथी पूरे ही आत्मा है, जीवात्मा व्याप्त है, चींटी के शरीर के अंदर फिट हुआ हुआ है मनुष्य के शरीर। इसीलिए चींटी की आत्मा फिर मरकर पैदा होगी चींटी ही होकर, क्योंकि वही शरीर मिलेगा तो उसको फिट होगा, अन्यथा नहीं होगा। हाथी की आत्मा मरने के बाद फिर पैदा होगा तो हाथी का ही शरीर में पैदा होगा, और शरीर में पैदा नहीं हो सकता है। मनुष्य के आत्मा मरकर यदि पैदा होना होगा तो मनुष्य के ही शरीर में फिट होगा, अन्यथा फिट नहीं हो सकता। ये जो कल्पना कर रहे हैं तो उनके पूछा जाए कि जड़ भरत हिरण कैसे बन गए राजा भरत? अब इसका क्या उदाहरण होगा? राजा भरत मरने के बाद हिरण बन गए कि नहीं? तो तुम्हारा यह तर्क तो वहां खंडित हो गया, कैसे बन गए हिरण? क्योंकि मनुष्य का शरीर वह मृग के शरीर में कैसे फिट हो गया? तुम्हारे कहने से तो फिट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिट हो गया। अब फिर दूसरे जन्म में वो मृग मरने के बाद फिर मनुष्य के शरीर में आ गया, कैसे फिट हो गया? मृग के शरीर में उसके डिजाइन का बना हुआ ढांचे में बना हुआ आत्मा फिर मनुष्य के शरीर में कैसे आ गया? अब ये जो कहते हैं कि पुरुष के शरीर में आया हुआ जो आत्मा एक बार पुरुष के बन गया है तो जब भी मरेगा वो पुरुष ही होगा, मेल ही होकर पैदा होगा, फीमेल नहीं हो सकता, स्त्री हो ही नहीं सकती। और स्त्री के रूप में बनकर जो आत्मा बन गया है वो उसी ढांचे का, तो स्त्री का ही शरीर होगा तो उसमें फिट, नहीं तो फिट नहीं हो पाएगा। वो कल्पना करते हैं, बिना आधार का कल्पना करते हैं वे लोग, इसमें कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, केवल काल्पनिक उनकी कथन है। यदि ऐसा है तो आप विचार करो, शिव पुराण में, पुराणों में कई चर्चा आती है। एक वह राजा था, जंगल में चला गया, जहां शिव और पार्वती विचरण कर रहे थे वो वहां पहुंच गया, तो उसको देखकर पार्वती को बड़ा लज्जा हुई। तब भगवान शिव ने कहा कि अरे तू चिंता न कर, क्यों लज्जा रही है? बोले देखो ना, पुरुष, दूसरा पुरुष आ गया हम लोगों दोनों के बीच में, इसलिए हमको शर्म लग रही है, लज्जा आ गई है। अरे क्या लज्जा करना, तो चिंता न कर, मैं उसको स्त्री बना देता हूं। पहाड़ से भगवान शिव ने उसको स्त्री बना दिया। ले जी, अब पुरुष था, स्त्री कैसे बन गया, कैसे फिट हुआ वो आत्मा उसमें? तो बाद में बहुत रोने लग गए, महाराज क्षमा करो, माफ करो। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, ऐसा करना, आज के बाद इस जंगल में नहीं आना, और इस जंगल को मैं श्राप दे देता हूं कि मेरे बारे, मेरे अलावा, भगवान शिव कहते हैं, मैं श्राप देता हूं कि मेरे अलावा इस जंगल में जो भी आएगा वो स्त्री हो जाएगा, आते ही जंगल के अंदर आते ही। तो जब वह राजा तो मुक्त हो गया स्त्री होने से, वो तो डरता रहा उस जंगल में जाने से, फिर दोबारे गया ही नहीं। फिर दूसरा राजा एक दिन घूमते घूमते गया तो वहां घुस गया, तो स्त्री हो गया, तो बड़ा डर गया, फिर क्या हो गया क्या हो गया। फिर आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि एक वर्ष तो स्त्री रहना, एक वर्ष पुरुष रहना, ये कैसे होगा, एक ही आत्मा ये दो शरीर में कैसे फिट हो रहा है? तुम्हारे कथन अनुसार तो वही नहीं सकता है, लेकिन वो अपुराण प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। अरे बाबा, हाथी मरकर चींटी हो सकता है, चींटी मरकर हाथी हो सकता है, ये सूक्ष्म शरीर का कोई आकार नहीं है। तुम ऐसा नहीं कहना कि वह गिल्ली मिट्टी की तरह जिस शरीर में फिट हुआ और वही सूखने के बाद एक डिजाइन बन गया, वो दोबारे वह दूसरे ढांचे में फिट नहीं हो सकता है, ऐसी कल्पना नहीं करना। वो सूक्ष्म आत्मा, जीवात्मा गिल्ली मिट्टी की तरह नहीं है, वह तो प्रकाश की तरह है, जीवात्मा तो प्रकाश की तरह है। वो तो बड़े से बड़े हॉल में भी फैल जाएगा और छोटे से छोटे बाथरूम में भी। बत्ती चली जाती है तब आप कैंडल जलाते हो कमरे में, तो उस कैंडल का प्रकाश पूरे कमरे में फैलता है कि नहीं? कमरा जितना बड़ा है उतने ही बड़े होकर वो प्रकाश रह जाता है। और तुम्हें जब टॉयलेट जानी होती है तो कैंडल को फिर टॉयलेट के अंदर ले जाते हो, तो उस कमरे में इतना बड़ा हुआ हुआ प्रकाश टॉयलेट के अंदर कैसे घुसेगा प्रकाश है? एक बार कमरे के आकार का डिजाइन बन गया, शेप बन गया उस प्रकाश को, तो फिर टॉयलेट के अंदर कैसे घुसेगा? लेकिन घुसता है कि नहीं? कैंडल लेके चले जाओ तो पूरा का पूरा कमरे के अंदर का प्रकाश टॉयलेट के अंदर घुस जाता है कि नहीं? अब टॉयलेट के अंदर घुसे तो प्रकाश किस आकार का बन गया? टॉयलेट के आकार का बन गया। अब फिर टॉयलेट से वो कैंडल को लेकर हॉल कमरे में आओगे तो फिर किस आकार का होगा? तुम्हारे कथनानुसार तो कमरे के खाली एक कोने को प्रकाशित करना चाहिए, बाकी सब हिस्सा तो अंधकार से भरा हुआ होना चाहिए। क्या ऐसा होता है? इसी बात को यहां कहते हैं, नैव स्त्री न पुमान्येष न चे भायम न पुंसक यद्यत् शरीरमादत्ते तेन तेन संरक्षते। वह जीवात्मा तो स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, नपुंसक भी नहीं है। स्त्री शरीर है, जीवात्मा स्त्री नहीं है। पुरुष शरीर है, जीवात्मा पुरुष नहीं है। नपुंसक शरीर है, जीवात्मा नपुंसक नहीं है।
अब विचार करो,
इतना सूक्ष्म है वो शरीर, वो जैसा शरीर उसको स्थूल शरीर मिलेगा वैसा ही होकर रह जाता है। यद यद शरीर मादत्ते, उसको जैसी उपाधि मिलती है वैसे ही हो जाता है। जैसे आकाश को, आकाश इतना सूक्ष्म है और व्यापक है, परंतु उस आकाश में जैसी उपाधियां आएंगे वो तत्त्व प्रतीत होता रहेगा। घट उपाधि आ गया तो वह आकाश घटाकाश के रूप में प्रतीत होने लग गया, मठ उपाधि आ गया तो वह आकाश मठाकाश के रूप में प्रतीत होने लग गया, बड़े सा खिड़की बना दिया तो वह आकाश उस खिड़की के रूप में छिद्र के रूप में बन गया, छोटे से सुई के नोक में छिद्र है धागा पिरोने का तो आकाश उतनी बड़ा हो गया। आकाश की विशेषता है जैसे उपाधि आती है वैसा ही होता है, उसको वैसा होने में कोई आपत्ति नहीं है। इसी तरह जीवात्मा को भी कोई भी शरीर प्राप्त हो उसको कोई आपत्ति नहीं है। स्थूल शरीर अग्नि के संपर्क से जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, परंतु सूक्ष्म शरीर अग्नि के संपर्क से नहीं जलता, नष्ट नहीं होता। अभी हमको पार्थिव शरीर पृथ्वी प्रदान मिट्टी प्रदान शरीर मिला है तो सूक्ष्म शरीर उसी के रूप में उसी के साथ मिलकर रह रहा है। जलीय जीव को जलीय शरीर प्राप्त होता है तो सूक्ष्म शरीर जलीय जीव के साथ मिलकर रह जाता है। तेजस स्थूल शरीर प्राप्त होता है तो वो जीव तेजस शरीर के साथ मिलकर रह जाता है। जैसे बालखिल्य ऋषि का शरीर ही तेजस है, हमारा शरीर पार्थिव है तो बालखिल्य ऋषि का शरीर तेजस है, धुंधकारी का शरीर वायवीय है। देख लो, बात समझ में आ गया आपको? भागवत में धुंधकारी की चर्चा आती है कि नहीं? जो भागवत में धुंधकारी का जो है शरीर है वह वायु प्रधान शरीर है, 50% धुंधकारी के शरीर में वायु है, हमारे शरीर में 50% मिट्टी है, और बालखिल्य ऋषि के शरीर में 50% तेज है। तो तेजस शरीर में वह तेजस बनकर रह जाता है, वायवीय शरीर में वायवीय शरीर के साथ रह जाता है, पार्थिव शरीर में पार्थिव शरीर, जलीय शरीर में जलीय शरीर। ये जो जीवात्मा है जैसा जैसा शरीर मिलता है वैसा ही वैसा बनकर रह जाता है, उसको कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए माताओं को ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि दूसरे जन्म में हम पुरुष नहीं हो पाएंगे, ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये उपनिषद प्रमाण है, आपको गारंटी दे रहे हैं ये उपनिषद। और पुरुषों को ये अभिमान करने की जरूरत नहीं है कि अगले जन्म में हम पुरुष ही होंगे। हाँ, इस मंत्र की व्याख्या में श्रद्धेय स्वामी अखंडानंद जी ने क्या मजेदार की व्याख्या की है। ये अभी जितने भी माताएं हुई है ना, पहले जन्म में ये टोटल पुरुष थे, और क्योंकि स्वाभाविक है जीव का विपरीत लिंग के प्रति अटैचमेंट आकर्षण आसक्ति, तो पहले ये पुरुष थे, सब स्त्री की ही चिंता किया करते थे, रात भर स्त्री, दिन रात 24 घंटा स्त्री स्त्री स्त्री। वो इतनी सुंदर है, उसका नाक इतना सुंदर है, उसके गाल इतनी सुंदर है, उसका शरीर इतना है, ये है वो है, रात दिन उस स्त्री का चिंतन करते थे, करते करते मर गए तो सब स्त्री बन गए। अभी जितने भी पुरुष हैं ये सब पुरुष वह पिछले जन्म में सब स्त्री थे, क्योंकि स्वाभाविक है विपरीत लिंग की चिंतन। तो बोले पिछले जन्म में सब स्त्री थे, बोले वो पुरुष कितना सुंदर है, कितना हैंडसम है, लेव जी वह चिंतन करता करते मर गए थे, सब अभी पुरुष होकर पैदा। ये जितने पुरुष हैं पूर्व जन्म में स्त्री थे, जितनी स्त्रियां हैं पूर्व जन्म में सब पुरुष थे, अभी फिर ये स्त्रियां पुरुष की चिंतन करते हैं दूसरे जन्म पुरुष हो जाएंगे, ये पुरुष स्त्री का चिंतन कर रहे हैं दूसरे जन्म में सब स्त्रियां हो जाएंगे। यम जो जो यम यम आपी स्मरण भावम तेजे तिंत कले वर्म, गीता में प्रमाण है। इस मंत्र की व्याख्या अखंडानंद जी ने जरा मजाकिया व्याख्या कर दी इस तरह। ये भी हो सकता है क्योंकि गीता का प्रमाण तो है ना, मरते समय जैसा चिंतन किया वैसे ही उसको जन्मांतर में शरीर प्राप्त होता है, उसी को लेकर यच्छत शरीरमादत्ते तेन तेन संरक्षते, वो आत्मा उस शरीर के द्वारा रक्षित होता है। कौन? जीव आत्मा, यानी शरीर के अंदर वह सुरक्षित है, उसी शरीर में सुरक्षित है, वह जाता नहीं है लोक लोकांतर में। आपको 60 वर्ष 70 वर्ष हो गया इस शरीर में रहते हुए, आप क्यों नहीं गए अंतरिक्ष में, क्यों नहीं गए स्वर्ग, क्यों नहीं गए नरक, क्यों नहीं गए पितृलोक? क्योंकि ये शरीर आपको बचाए रखा है, आपकी रक्षा कर रहा है, जाने से रोक रहा है। और ये शरीर जिस दिन रोकना बंद कर देगा तो शरीर अपने आप गिर जाएगा, तो फिर आप तुरंत या तो पितृलोक जाओगे या देवलोक जाओगे या अपने अपने वासना और कर्म के अनुसार पता नहीं कहां जाओगे, हम नहीं कह सकते हैं। तो ये शरीर रक्षा करता है, कुत्ते के शरीर कुत्ते के जीवात्मा को रक्षा करता है, चींटी के शरीर चींटी की जीवात्मा की रक्षा करता है, हाथी के शरीर हाथी की आत्मा की रक्षा करता है। इसीलिए वह धुंधुकारी की तरह विचरण नहीं करता है। धुंधुकारी का शरीर कैसा था? गोकर्ण ने कहा वायु प्रधान था, इसीलिए वह घूमता रहता था। तो गोकर्ण ने कहा कि तुम कौन हो? बोले मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी, सामने आ जाओ। बोले मैं सामने नहीं आ सकता। बोले क्यों इस तरह विचरण करते हो? क्योंकि मेरा वायु प्रधान शरीर है, इसलिए मैं एक जगह बैठ ही नहीं सकता है। तब गायत्री मंत्र अभिमंत्रित करके छिड़क दिया और बैठकर थोड़ी संवाद हुई। इसी तरह ये शरीर आपको उस तरह विचरण करने से, बिखरने से रोकता है, रोक देता है, बिना समय में लोक लोकांतर गमन से रोकता है, रक्षा करता है। रक्षते भक्षते युज्यते, ये पाठांतर है। वो जीवात्मा तत्त शरीर में रहकर अपने स्वाशुभ कर्म फल को भोगता है, इसलिए भुज्यते, शरीरेण भुज्यते और शरीरेण रक्षते। और आगे क्या कहेंगे कल? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।